تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات، وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس، ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پارا نمبر 3، تیسرا پارا بہت ہی خوبصورت طریقے سے ہمیں سورۃ بقرہ کا آخری حصہ اور سورۃ آل عمران کا ابتدائی حصہ بتاتا ہے. پارے کا آغاز ایک بہت خوبصورت ادب سکھا کر ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ شخصیات میں نہ الجھو بلکہ جس کام پہ انہوں نے زندگیاں گزاری اس کو دیکھو. اللہ تعالیٰ نے آپس کے اختلافات کو دور کر کے اصل پیغام پہ نظر رکھنے کا حکم دیا. پہلے لوگ یہ چیز نبیوں کے ساتھ کرتے تھے، آج کے دور کے لوگ یہ چیز ائمہ کرام اور دین کے خدمتگار لوگوں کے لیے کرتے ہیں. یہ بتا دیا کہ اصل مقصد پہ فوکس کرو اور تم جھگڑوں میں نہ پڑو. آیت نمبر 254 میں اللہ تعالیٰ ہمیں خرچ کرنے کا حکم دیتے ہیں اور اس بات کا احساس دلاتے ہیں کہ آج تمہارے پاس خرچ کرنے کی جو صلاحیت ہے یہ ہمیشہ نہیں رہے گی. ایک ایسا دن آئے گا کہ تم اپنا مال اسباب لے کر پھرو گے لیکن کوئی قبول نہیں کرے گا. لیکن عموماً انسان کے دل پر بوجھ پڑتا ہے اللہ کے راستے میں کچھ دینے سے. اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں ہمیں اپنا تعارف کروایا، 25 کے قریب نام اور صفات یعنی نیمز اینڈ ایٹریبیوٹس پیش کیے، کیونکہ جب تک اللہ کی صحیح معرفت نہیں ہوتی اس کے راستے میں نہ دل کھلتا ہے نہ ہاتھ کھلتے ہیں اور نہ انسان کوئی بھی کام کر سکتا ہے. لہٰذا آیت الکرسی کے اندر اللہ تعالیٰ کی خوبیوں کو جاننے کے بعد بتا دیا کہ اب کسی کو زبردستی دین میں داخل نہیں کیا جائے گا، لائک راہ فی الدین، کیونکہ اللہ نے ہر چیز کھول کھول کر بیان کر دی. اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی طرف جانے کی طلب تو ہر ایک میں ہے، لیکن راستے کے طاغوت ہیں، ان سے بچنے کے لیے عروۃ الوثقیٰ یعنی قرآن اور سنت کو تھامنا لازم ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ان سارے مرحلوں سے گزر جائے گا وہ اللہ کا دوست بن جائے گا، اور اللہ جس کو اپنی دوستی میں لے لیں تو یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ اندھیروں سے روشنیوں میں نکال دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی دوستی میں لے لے. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ لوگ نفس کے اور معاشرے کے اور ماحول کے اثر میں اس طرح جکڑے رہتے ہیں کہ بعض دفعہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد کچھ طاغوتوں کا تذکرہ کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر مال خرچ کرنے کی مختلف صورتوں کا تذکرہ ہے. سب سے پہلے صدقے کی بات ہے. حقیقت یہ کہ صدقہ صدق سے ہے، ہم اسی چیز پہ خرچ کرتے ہیں جس کے لینے میں ہم سنجیدہ ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، سنسیئر ہوتے ہیں. ہم لاکھوں کی چیزیں بھی خرید لیتے ہیں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے اور اس کی ورتھ بھی ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہاتھ نہیں کھلتے کیونکہ ہم اس کو ایک ایکسٹرا چیز سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے صدقے کی خوبصورتیاں بیان کی کہ تم زمین کو اگر ایک دانہ دیتے ہو تو وہ 700 دانوں کی صورت میں کم از کم پلٹا دے، تو سوچو کہ مخلوق تمہیں یہ دے رہی ہے تو خالق تمہیں کیا دے گا. اس مخلوق کے ہاتھ میں اپنی چیزیں دے دو کہ جو سب کو دینے والا ہے، پھر دیکھو وہ تمہیں دنیا میں کتنا نوازتا ہے اور آخرت میں کتنا نوازتا ہے. لیکن بعض لوگ جذبات میں آ کے دیتے ہیں لیکن بعد میں پھر برا مناتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، اور جن کو دیا ہوتا ہے ان کو رسوا کرتے ہیں یا ان کا پیچھا کرتے ہیں، ہمارا لگایا ہوا کدھر گیا، کدھر گیا، کس نے خرچ کیا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان باتوں سے اپنے مال کو ضائع نہ کرو، جیسے غیب پر ایمان لاتے ہوئے اللہ کے لیے عبادت کرتے ہو اس طرح اللہ کے نام پر کسی کو کچھ دے کر بے نیاز ہو جاؤ. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا بھی حکم دیا کہ یوت الحکمت میں یشا، مال کو صحیح جگہ پہ لگانا یہ حکمت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے. آپ دیکھیے کہ جگہ تو بہت سی ہوتی ہیں، مانگتے بھی بہت سارے ہیں، کچھ نہیں بھی مانگتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ دی کہ تم خود سوچو کہ تمہارا لگایا ہوا کہاں کام آئے گا. کہاں ایک لگاتے ہو تو 10 میں بدلے گا، کہاں ایک لگاتے ہو تو 70 میں بدلتا ہے، اور کہاں ایسا اجر ہے کہ جس کا کوئی حد نہیں، اجر غیر ممنون. सदका जारिया के नाम पर लगाए हुए काम, इल्म की नशर व इशात और तरवीज। आज के दौर में हमारे सदका व खैरात और ज़कात के बेहतरीन मसरफ अल्लाह के दीन की प्रमोशन, उसको फैलाने में लगाना है, क्योंकि इस पे कौन लगाएगा? जलजला आएगा, सारी दुनिया के लोग उठकर उनकी मदद करेंगे। लोगों की भूख मिटाने का भी लोगों को ख्याल है। आज वो चीज़ जो पीछे पड़ी हुई है वो है अल्लाह के दीन की नशर व इशात। आज भी दूसरे अदियान वाले अपने मजहब की तरवीज में लाखों करोड़ों लगा देते हैं, लेकिन आज हम मुसलमानों के लिए वाकई एक सोचने का नुक्ता है कि आज हम अमीर हैं लेकिन हमारा दीन गरीब क्यों है? आज हम खुशहाल हैं लेकिन इस्लाम एक यतीम बच्चे की तरह क्यों गिरा पड़ा लगता है कि जिसका जो दिल करता है उसको कह दे? तो मुझे आपको इस चीज़ की दावत दी जा रही है कि सिदके दिल से लगाओ, लोगों को दीन से जोड़ो, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें लेकर दो, उनके ऐसे रबते जोड़ दो कि वो अल्लाह के राज अल्लाह से जुड़ जाएँ और उनके अंदर की खैर को ले आओ। फिर उन लोगों का जिक्र है जो अपने आप को पूरा वक्त अल्लाह के दीन के साथ जोड़ देते हैं। फरमाया, तुम ऐसे लोगों को ढूंढो और उनका ऊपर खर्च करो, क्योंकि अगर दीन को पार्ट टाइम लिया जाएगा तो दीन का काम उस तरह से नहीं हो सकेगा। आज मस्जिदों के मौलवी साहब बेचारे किस तरह गुजारा करते होंगे, ये मैं और आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद खर्च की बदतरीन किस्म सूद है। सूद हकीकत में एक नासूर है। काला धन सूद अस्वद से ब्लैक मनी को कहते हैं। असल में इसमें माल की मोहब्बत और ज़्यादा बढ़ती है। गरीब से उसकी मजबूरी खरीदी जाती है और अमीर और दिन ब दिन अमीर होता है। इसको बदतरीन बात कहकर सिर्फ इतना ही कह दिया कि ये वो लोग हैं कि जो अपनी कब्रों से दीवाने और मजनू बनकर उठेंगे। फिर इन आयत में अल्लाह ने सूद के लिए अल्फाज इस्तेमाल किया, हर्रम और रिबा, अल्लाह ने सूद को हराम किया। फिर इसके साथ ये भी बता दिया कि वह मनाद अफलाइक असहाबुल नार, जो इस सारी बात को सुनकर दोबारा यही काम करेगा वो आग के साथी हैं। फिर ये भी बता दें, यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देता है। चार बातें हैं जिसके बाद वाकई दिल मानता है। और आज दुनिया के नक्शे पे देखिए, जिन जिन चीज़ों में ये चीज़ें लगती हैं वो चीज़ें कुछ सालों के बाद ख़त्म होने लगती है। लोगों को तजदीद ईमान की दावत दी कि देखो पिछली ज़िंदगी जो हो चुका तो हो चुका, अब आके एक नई ज़िंदगी शुरू करो। आमनु वामिलुस सालिहात वाली, वाकामुस सलाह वाली और आतुस ज़कात वाली। फिर इसके बाद कहा कि अगर तुम ये सब अल्लाह के नाम पर ये सब कुछ सुनकर भी नहीं छोड़ते तो याद रखो कि फ़ाज़नु बिहर्ब मिन अल्लाह व रसूलिही, तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग है। सूद इतना गंभीर गुनाह है कि इस पे जो वईद है वो किसी और गुनाह पे नहीं। अल्लाह ताला हम सबको इससे महफूज रखे। फिर तंगदस्त को मोहलत देने का मामला है कि किसी की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने की बजाय गरीब लोग अगर तुमसे कुछ कर्ज ले भी लेते हैं तो नहीं अदा कर सकते तो माफ़ कर दो, बहुत अजर है। आपसे कोई कर्ज ले और आप उसको मोहलत दे दें, इसका बहुत बड़ा अजर है। अल्लाह ताला हमारे दिलों को बड़ा कर दे। उसके बाद कुरान पाक की सबसे तवील आयत जिसको आयत दैन कहते हैं, जो कर्ज के मामलात से मुतल्लिक है, उसकी बात करके बता दिया। हकूकुल्लाह के साथ हकूकुल इबाद भी सिखाते हैं और माली मामलात दीन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, हमें इसको सीखने की कोशिश करनी है। आखिरी आयत में अल्लाह ताला ने अपनी बड़ाई इस तरह से पेश की कि अगर मैं और आप उसको लेकर चल पड़ें तो ये हो नहीं सकता कि हम अपने रब को पा ना लें। और बाकी ये वर्ष के ख़जाने हैं जो अल्लाह के नबी को मेराज के तो मौके में दिए गए। इसमें नेक लोगों का ये कॉल के समय नवाताना मुझे आपसे ये तकाजा करता है कि जो बात सुने दिल से दुआ करें, नीयत भी करें, इरादा भी करें कि सुन के मानेंगे। और आखिर में फिर ख़ताओं की माफ़ी है कि अल्लाह तो हमारी गलतियों को माफ़ कर दे। इसके बाद सूरत आले इमरान शुरू होती है जो असल में हमारी उस दुआ का हिस्सा है कि अल्लाह में भटके हुए लोगों में ना करना। जैसे सूरत बकरा में बनी इसराइल के किस्से थे, तो इसी तरह सूरत आले इमरान नसारा के अकायद को खोलती है जिसमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की हैसियत को वाज़ह किया गया और ये बता दिया कि अल्लाह ने अपने कुरान में हर बात को खोल के पेश किया। और कुछ लोग हैं जो कुरान में से अमल की बातों पर गौर करते हैं, कुछ शुबे वाली बातों में पड़े रहते हैं। ईमान वालों की दुआ क्या है कि रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना। हकीकत है कि हिदायत इतनी कीमती चीज़ है कि पहले पारे से शुरू हुई और तीसवें पारे तक हिदायत का सफ़र जारी ही रहेगा। मुझे आपको अपने सोने चांदी की जितनी फ़िक्र है इससे ज़्यादा हमें अपनी हिदायत की फ़िक्र होनी चाहिए। फिर इसमें अल्लाह ताला ने ग़ज़वे बदर की कुछ झलकियाँ पेश करके बता दिया कि देखो मदद अल्लाह की तरफ से आती है, जब अल्लाह किसी का साथ देता है तो उसको कोई नुकसान नहीं दे सकता। फिर आयत नंबर 14 और 15 में अल्लाह ताला ने बड़ा खूबसूरत तकाबुल किया दुनिया और आखरत की नेमतों का। हकीकत है कि दुनिया और आखरत के बारे में हमारा नज़रिया वाज़ह होना चाहिए। अल्लाह ताला ने खुद मोहब्बत डाली माल की, औलाद की, बीवियों की, सोने चांदी की, लेकिन मतलूब क्या है कि इसी रोज़ और शब में खो के न रह जाओ कि तेरे ज़मानो मकान और भी हैं। आप इस दुनिया से फ़ायदा उठाइए, लेकिन इसको दिल में न रखिए। दुनिया हाथ में होनी चाहिए, दिल में नहीं होनी चाहिए। इस दुनिया को आखिरत के लिए कश्ती बनाएं, इस माल को इस्तेमाल करके आखिरत में सदका जारिया कमाएं, इस औलाद को अल्लाह के रास्तों में लगा के अलमाल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया का काम लें, और इस तरह से यहाँ से गुजर के जब मैं और आप आगे पहुँचे तो वह रिदवान मिन अल्लाह ही की पुकार सुने और अल्लाह में अपने चेहरे का दीदार करवा दे। अल्लाह ताला मुझे आपको इस दुनिया से आगे उठाकर अपनी ख्वाहिशों, अपनी तमन्नाओं को अगली दुनिया में ट्रांसफ़र करने की दावत देते हैं। ये दुनिया काम की, आखिरत आराम की। अगर आज आराम किया तो शायद वहाँ मशक्क़त सहनी पड़े। इसके बाद अल्लाह ताला मुझे आपको कुछ ऐसी खूबसूरत दुआएं सिखाते हैं, और सूरत आल इमरान दुआओं से भरी हुई हैं, कि जिसमें एक दुआ अल्लाहुम्मा मालिक अल्मुल्क तू तिल मुल्क मन तशा है, जिससे पता चलता है कि अल्लाह के ख़जाने कितने वसी हैं। अल्लाह ताला दोनों हाथ से लौटाता है, फिर कमी नहीं आती। सदियां गुजर गई दुनिया बने हुए, आज तक ना धूप ख़त्म हुई ना बारिश ख़त्म हुई। उस रब से मांगिए, वो दे सकता है, वो आपके कर्ज़ों को भी दूर कर सकता है, वो आपकी मजबूरियों को दूर कर सकता है। शर्त यह है कि हम उसके ऊपर ईमान रखें। इसके बाद अल्लाह ताला ने हमें अहले किताब के साथ ताल्लुकात की हदबंदियाँ सिखाईं, और उसके बाद सिखा दिया किन कुन तुम तो हिब्बुन अल्लाह फत्तबे उनी। अल्लाह से मोहब्बत का दावा रसूल की इत्तबा की सूरत में झलकेगा। जितनी मोहब्बत अल्लाह की होगी उतनी ज़िंदगी रसूल के तरीक़ों के मुताबिक होगी। इसके बाद बाकायदा तौर पर आले इमरान का तذکرہ शुरू होता है, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का ख़ानदान था। किस तरह एक माँ की दुआ, और उसने अपनी बच्ची को अल्लाह के लिए नज़र किया और पैदा होते ही उसको शैतान से बचा दिया। मेरे आपके लिए एक सबक है कि आज की माँ को भी ऐसी ही मन्नतें मांगने की ज़रूरत है। अपनी औलादों से माशी उम्मीदें लगाने की बजाय, उनको दुनिया के इस चक्कर में डालकर बिल्कुल आखरत फरामोश कर देने की बजाय अल्लाह के रास्तों में लगाएं। दुनिया आखरत में उनको अल्लाह के बंदे बनना सिखाएं। फिर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की तहारत और पाकी का जिक्र, कैसे बिन मौसम के फल खाए उस बच्ची ने, और अनमैरिड कवारी बच्चियों के लिए मरियम का किरदार, कि इतनी पाकीज़ा थी कि जवानी उन्होंने इबादत में गुजार दी, और उनकी जवानी में ऐसी कोई बातें नहीं थी जो अमूमन आज उन्हीं के साथ नस्बत जोड़ने वालों में दिखती हैं। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र, कि कैसे लोगों ने दुश्मनी में आकर उनको मारना चाहा, जिसे अल्लाह बचा ले उसको कोई पकड़ नहीं सकता। और उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने अहले किताब के साथ दावत का एक खूबसूरत तरीका सिखा दिया, कि तालो इला कलिमतिन सवाम बैनना व बैनकुम। मुझे आपको ये सिखाया कि दावत देते वक्त कॉमन ग्राउंड पे बात करो, इख्तलाफी बातों को छोड़ दो, जो तुम्हारे और हमारे बीच में कॉमन है उसको ले ले। याद रखिए, ज़िंदगी का खूबसूरत असूल है, चाहे बड़े पैमाने पर उम्मत को जोड़ना हो या शौहर बीवी के टूटते हुए घर को बचाना हो, हमेशा इख्तलाफात में ये देखिए कि हमारे बीच में अच्छी चीज़ें क्या हैं, उसको ले लीजिए, दूसरी चीज़ों को पीछे डाल दीजिए। वैसे भी ये दुनिया जन्नत नहीं है, असल बात तो आगे की है। आखिरत अच्छी हो गई तो बात बाद में खुद ब खुद अच्छी होगी। फिर इसके बाद हज़रत इब्राहिम को एक मॉडल की सूरत में पेश करके उनकी तालीमात पे गौर व फिक्र करवाया, और अहले किताब में से कुछ लोगों की अमानतदारी का तذکرہ कर दिया, और इस तरह होते होते इस्लाम को हकीकत में अल्लाह की पसंद साबित किया गया। इस पूरे पारे में इस्लाम का रंग गालिब दिखता है। किस तरीके से अल्लाह ताला मुझे आपको इस्लाम की खूबसूरती पे अमल की दावत देते हैं, अल्लाह ताला मुझे आपको इस पे अमल की तौफीक दे, और इस बारे में आयतुल कुर्सी को पढ़ने की आदत भी हमने डालनी है। फिर इसी तरह से अपने अमाल की हिफाजत करनी है, देकर जतलाना नहीं, ना शुक्रिया और बदअमली से बचना है, और इन अल्लाह का कुर्ब पाने के लिए अपनी बेहतरीन चीज़ों को अल्लाह के रास्ते में देना है, और हर वो चीज़ जो अल्लाह से हमको दूर कर दे उससे अपने आप को दूर करना है। अल्लाह ताला मुझे आपको इसकी तौफीक दे। आयत नंबर 254, जिसमें अल्लाह ताला हम हुक्म देते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू अन्फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिय यौमुल ला बय्युन फीही वला खुल्लतुन वला शिफ़ा वल काफिरून हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगो, खर्च करो उसमें से जो हमने तुमको दिया उस दिन के आने से पहले, जिस दिन ना तो कोई ख़रीदो फरोख्त होगी और ना कोई दोस्ती होगी और ना कोई सिफारिश होगी, और काफिर वही ज़ालिम है। तो गोया के टाइम बाउंड चेक है जो हम अल्लाह के रास्ते में दे सकते हैं। कल वो वक्त नहीं रहेगा जो आज है। अल्लाह ताला हमें अल्लाह के रास्ते में दिल खोलकर खर्च करने वाला बनाए। और फिर एक आयत जिसको आयत रिबा कहते हैं 275, अल्लज़ीन याकुलून अर्रिबा ला यकूमून इल्ला कमा यकूमुल्लज़ी यतखब्बतुहु शैतानु मिनल मस। ये आयत भी गौर व फिक्र कहती है, आज जिस तेज़ी से मुसलमान इन चीज़ों में पढ़ते जा रहे हैं जिसमें इंटरेस्ट है और इसी तरह की कुछ और चीज़ें, कि आने वाली नस्लों को शायद ये इतना घनौना जुर्म नहीं लगेगा। अकेले में बैठकर सोचें, क्या मेरा मालिक मुझे अपनी रज़ा के साथ रिस्क नहीं दे सकता जो मैं उसको नाराज़ करके पाऊँ। अल्लाह ताला हमें बचने वाला बना दे। सूरत आल इमरान की आयत 30 भी तवज्जो तलब है, यौम तजिदु कुल्लु नफ्सिन मा अमिलत मिन खैरिन मुख्तदरा। जिस दिन हर नफ्स अपने आमाल को हाजिर पाएगा, जो कुछ उसने बुरे अमल किए होंगे वो भी वहाँ होंगे, और उस वक्त चाहेगा कि काश उसके और उसके गुनाहों के बीच में दूरी हो। और अल्लाह तुमको अपने नफ्स से डराता है और वो बंदों पर शफकत करने वाला है। अल्लाह ताला आज दुनिया में हमें अपने गुनाहों से बचने वाला बना ले और हम हकीकत में अल्लाह के मन पसंद बंदे बन जाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।